بسم الله الرحمن الرحيم. میرے پیر و مرشد میرے شیخ عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب نور اللہ و قدو، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر سالن میں ذرا سا نمک کم ہو جائے، جب تک نمک آ نہیں جاتا نعرے لگاتے ہیں مالگر اوڑا، اور جب تک نمک آ نہیں جاتا اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے. صرف اور کتنا نمک کم ہوتا ہے؟ صرف ایک چٹکی، اس سے زیادہ نہیں. ایک چٹکی نمک ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر کھانا کھاتے. فرماتے اسی طرح سے دنیا کی کتنی ساری چیزیں ایسے ہم کرتے ہیں اہتمام سے کہ جب تک وہ نہ ہو صاحب، پلیٹ کون سی رکھی ہے، کس گلاس میں پانی دیا، کہاں بٹھایا، ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں. اگر تحفے تحائف کا عدلہ بدلہ ہو، تحفے کا بدلہ مسئلہ یہ ہے کہ تحفہ دینا، ہدیہ دینا یہ سنت، دینا چاہیے، چاہے وہ شادی کا موقع ہو جائے یا ولادت وغیرہ کا موقع ہو، اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ کچھ شرائط ہے دینے کی، اور اس میں شرط یہ ہے کہ جو دینے والا ہو وہ ایسا اہتمام نہ کرے کہ عین موقع پر ہو، بلکہ پہلے سے گھر میں جا کر دے، پہلے گھر چلا جائے شادی سے اور وہاں جا کر ہدیہ تحفہ دے دے. یہ نہیں کہ اینڈ ٹائم پہ لفافے، وہ کہہ رہے نہیں، وہ کہہ رہے ہاں، وہ دے دیا تحفہ، چاہے وہ نقد کی صورت میں ہو اور چاہے وہ کسی چیز یا شے کی صورت میں ہو، بالکل جائز اور درست ہے، بلکہ اس کو دینے کا ایک اچھا طریقہ بتایا جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو ہدیہ دے تحفہ دے وہ بدلے کی امید نہ رکھے کہ میں نے دیا ہے مجھ کو بھی ملے گا. کہ میں نے ہدیہ تحفہ دیا تو مجھ کو بھی ملے گا، یہ امید رکھے. اور ہدیہ لینے والا، تحفہ لینے والا، اس کے لیے ادب سکھایا کہ جو تمہیں تحفہ دے اس کے بدلے میں اس کو تحفہ دو، تو یہ ادلے بدلے پر یہ بات یاد آئی تھی کہ جو تحفہ دے اس کو تحفہ دو، اپنی حیثیت کے موافق مقابلے بازی نہ کرو اور ریس مت لگاؤ کہ اگر اس نے 500 دیا ہے تو ہم نے 700 دینا ہے، یا 500 دیا جان چھڑانے کے لیے 500 دینا ہے. اگر بعض لوگوں کا تو رواج بھی ہے کہ جو ہدیہ تحفہ دیا جاتا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں، شادی میں خصوصا، گویا کہ پوری لسٹ اور فہرست بنتی ہے. تو اس لسٹ کا اور فہرست کا بنانا یہ اچھا کام نہیں ہے. لہذا تحفہ دینے والے کو ہے تحفہ دو، اسی سے محبت بڑھتی ہے. تحادی شریف میں آتا ہے تحادو تحابو ہدیہ دو, اس سے محبت بڑھتی ہے. یہ محبت کی چیز ہے. لہذا ہدیہ دینے کی ترغیب دی گئی, لیکن ہدیہ دیتے وقت یہ نیت نہ رکھو کہ مجھے بھی بدلے میں ملے گا. اور ہدیہ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ چھپا کر دیں. لہذا اگر شادی بیاہ میں دینا ہے تو پہلے دے, پہلے لے جا کر دے. اور اس میں اگر یہ نیت ہوتی ہے کہ چلو بھائی ایک مسلمان بھائی کی شادی ہو رہی ہے, اس کے بچے کی بچی کی, تو اس میں اگر تعاون بھی کرتا ہے تو ماشاءاللہ کوئی بری بات نہیں, اچھی بات ہے کہ چلو بھائی اس کے ذرا چھوٹا سا تعاون ہو جائے گا اس کے خرچ میں, یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ہدیہ دینے والا بدلے کی امید نہ رکھے کہ مجھے بھی ملے گا, کیونکہ نہ ملے تو ہم ہدیہ دینا بند کر دیتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں وہ تو دیتا نہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. اور دوسری بات ہدیہ لینے والے کے لیے وہ یہ کہ وہ ہدیہ لے اس کا شکریہ بھی ادا کرے, جزاک اللہ, خشک معاملہ نہ کریں, خشک معاملہ نہ کریں. یاد آئی بات, دیکھو اب بزرگوں کے کیا اخلاق ہوتے ہیں. حضرت مولانا حضرت مولانا اصغر حسین صاحب, اصغر حسین میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, جو جونپور میں پڑھاتے تھے, جونپور کی شاہی مسجد میں, جہاں میرے دادا پیر میرے شیخ کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھاتے تھے. وہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی تھے. اور یہ ادارے کا کیا نام ہے, ارشاد دارالارشاد. یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ اصل میں یہ حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انہی کا بنایا ہوا اور شروع کیا ہوا یہ تجارتی مرکز تھا. پھر انہوں نے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے خریدا تھا. اب اس میں بات دیکھی کیا آپ نے, حضرت فرماتے ہیں اس میں ایک طے ہو گیا تھا کہ کچھ ماہانہ اقساط یعنی قسطوں پر حضرت نے اس کی ادائیگی مفتی شفیع صاحب نے کی تھی اور قسطوں پر طے ہو گیا تھا. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت کو ماہانہ جو پیسے بھیجتا تھا تو اس کے جواب میں حضرت کا خط یا منی آرڈر بھی اس پر لکھا آتا تھا. باتیں پڑھ کے تو بس میرا برا حال ہو جاتا تھا. اور وہ بات یہ ہوتی, حضرت لکھتے تھے اکثر جزاکم اللہ, آپ کی شفقت اور مہربانی ہے. باتیں ایسی محبت سے لکھتے تھے کہ میرا تو دل کٹ کے رہ جاتا کہ آپ اس فقیر پر اتنی شفقت اور احسان فرماتے. یعنی حضرتی کا مال اور ادائیگی فرما رہے ہیں گویا قرض کی, ایسے جواب کے کہ بس شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں کہ استاذ بھی اور دے بھی قرضہ رہے ہیں اور اوپر سے شفقت اور کہ آپ کا احسان ہے, اس قسم کے الفاظ حضرت کے ہوتے تھے. تو یہ تو تھا قرض کا معاملہ. ہدیہ دینے والا جب ہدیہ دے تو اس کی دل جوئی ہے کہ اس کو محبت سے جزاک اللہ کہے, اس سے دل بڑھ جاتا ہے. یاد آتی ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت کا انداز. ایک دفعہ حضرت کو ہدیہ پیش کیا, حضرت نے اس میں سے نقد جو تھے وہ نکال لیے اور لفافہ वापस इनायत फरमाया, फरमाया भाई रख लो, काम आएगा आइंदा देने के लिए। कभी मोहब्बत सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए, यानी मोहब्बत बरामदास, इसमें कोई लालच वाली नहीं, मोहब्बत से दिल जोई, और बहुत एहतमाम से जजाक अल्लाह फरमाते थे। एक साहब एक दफा हजरत को हदिया दिया और भागे, बाकी भागे, बुलाओ बुलाओ उसको बुलाओ। फरमाया भैया ऐसे क्या, आपने हदिया दिया, हदिया देने वाले को खुशी होती है, मोहब्बत से देता है, हदिया लेने वाले को भी तो खुशी होती है कि अल्लाह ताला हदिया दे रहे हैं, अता फरमा रहे हैं। फरमाया देखो तुमने अपनी खुशी तो देखी, हमारी खुशी भी तो देख लो, जब तुमने इतनी मोहब्बत से दिया तो अपनी खुशी देख ली, तो जब जिसको दिया जाए वो खुश होता है तो उसको देखे, औलाद पर जब इंसान खर्च करता है, उसको पहने में कोई चीज कर देख इस्तेमाल करते हुए देखता है, खुशी होती है। तो इसी तरीके से जिसको हदिया मिलता है उसको खुशी होती है, और ये खुशी कोई लालच की थोड़ी है, ये कोई लालच की खुशी थोड़ी है, ये तो एक बशरी चीज है कि उसको अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत मिल रही है, वो खुश हो रहा है। तो बहरहाल हदिया जिसको दिया जाए, तोहफा दिया जाए, उसके लिए अदब सिखाया, तुम जज़ाकअल्लाह बोलो, शुक्रिया अदा करो, और उसका बदला दो, उसका बदला दो, और जिसने दिया है वो बदले का इंतजार न करे, इसको भी अदब सिखा दे, तुम दो। सुभान अल्लाह, ये है कैसी प्यारी तालीम है अखलाकी तौर पर। तो मैं आरज कर रहा था कि इंसान खाने में नमक अगर कम हो जाए, जब तक नमक आ नहीं जाता खाना नहीं खाता। जी थोड़े से नमक से क्या होता है, तो हजरत फरमाते थे इस बात से कि थोड़े से गुनाह से क्या होता है, एक सुन्नत ही तो छोड़ी, क्या होता है इससे। अरे साहब क्या इतना एहतमाम के हमेशा सीधा पाँव मस्जिद में दाखिल करना, नंगे सर खाना ना खाना, नंगे सर पानी ना पीना, और बैतुल खराम में हमेशा बायां कदम पहले रखना, वगैरह वाली का जो तमाम सुन्नत है, तमाम आमाल, उसका एहतमाम। अरे साहब ये क्या, अच्छा भाई इन हजरात से पूछा जाए आप हमेशा 9 बजे दुकान क्यों खोलते, आप 9 बजे ही दफ्तर क्यों जाते, 9 बजे दफ्तर में आए कहते 10-15 मिनट का ग्रेस टाइम तो है, उसके बाद अगर चाहे आप ग्रेस कंपनी का कपड़ा भी पहन कर आ जाए लेकिन फिर आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, और आपकी शख्सियत भी ग्रेसफुल ना रहेगी, फिर आप चाहे कितना ही ग्रीस लगाते रहे, यानी ग्रीस चिकना लगाने के लिए होता ना, तो मस्का लगाए आप, उसूल बनाया। अरे भाई ये कोई आसमानी उसूल है, कोई आसमान से ना दिल में, आपको पक्का ठक्का मालूम है भाई स्ट्राइक है, काम नहीं है, क्यों ऐसे कर रहे हैं। आखिर घुमा फिरा के बात आई भाई डिसिप्लिन नाम रखेंगे उसका, उसका नाम रखेंगे डिसिप्लिन, इंतजाम। क्योंकि अगर ये डिसिप्लिन ना हो, अगर ये डिसिप्लिन ना हो तो नतीजा क्या निकलेगा, बस इंतजामी हो जाएंगे। बस इंतजामी पर एक बात याद आई कि शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह से किसी शख्स ने कहा अल्लाह ताला के कुछ एक असरार है, और उन असरार में से ये भी है कि जो छुपे हुए काम होते हैं ना, अल्लाह ताला उसके लिए भी कुछ मखलूकात रखी है उसके लिए, जिनमें फरिश्ते भी हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ऐसे छुपे हुए काम जिसको तकवीनी काम के नाम से याद किया जाता है, उन तकवीनी कामों के लिए इंसानों में से भी मुंतखब फरमाते हैं, जो बातनी तौर पर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं। तो हजरत शाह मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि हजरत आजकल दिल्ली में इंतजाम अजीब और गरीब सा है, कौन है आजकल यहाँ का कुतुब? फरमाया, भाई वो खरबूजे वाला है फला जो बाजार में होता है। अच्छा, कहा दिखते हैं भाई, गए खरबूजा हमें कितने गया जीतने का, दे दो भाई काट के। काट कर दिया खरबूजा, गया भाई ठीक नहीं दूसरा दो, मीठा नहीं फीका है तो दूसरा दे, मीठा नहीं है दूसरा दो। वो दिए जा रहा है, वो लिए जा रहा है, वो दिए जा रहा है। उससे क्या वाकई यही हाल होगा। कुछ अर्सा गुजरा तो हजरत साहब साहब, हजरत आजकल कौन है, कोई जल्लाद आया हुआ है, हर चीज में इतना टाइट और उसूल और जवाबत और एक एक चीज। फरमाया, भाई आजकल वो शरबत वाला फला वो है। वो साहब गए, एक भाई कितने का शरबत, ये अठाने का शरबत, एक गिलास से दो, एक गिलास में थोड़ा सा पिया, फेंक दे के ठीक नहीं जहाँ पर। अबे साले क्या खरबूजे वाला समझा हुआ, जो शरबत था आठाने था, ये ले पैसे चल निकल, और नहीं मिलेगा, अगर और पीने आठाने निकाल। खरबूजे वाला समझा, तो ये अल्लाह के तो उसूल, हर चीज हो उसूल से माशाल्लाह एक काम चलता है। तो शरीयत में ये जो सुन्नतें हैं, ये जो आकाम हैं, उस आकाम सुन्नतों पर अमल करना एक उसूली चीज है। इंसान उससे देखा ही है कि जो उस तरतीब से काम करता है, उस तरतीब से काम करने की वजह से उसके अंदर बरकत देखी और तरक्की देखी। अब एक आदमी दुकान खोलता है, कभी 9 बजे खोल रहा है, कभी 10 बजे खोल रहा है, कभी 12 बजे खोल रहा है। एक शख्स आया खरीदारी के लिए, कितने बजे दुकान खुलेगी? उसने कहा, भाई इनका कोई टाइम नहीं पता। नतीजा क्या होगा? कहेगा, भाई दूसरा तलाश करो। एक दफा इंतजार कर लेगा, दो दफा कर लेगा, आइंदा तो नहीं होगा ना। कहेगा, भाई दूसरा आदमी तलाश करो, क्योंकि उसूल के खिलाफ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो शरीयत के अहकाम है, ये जो सुन्नतें हैं, जो करने के काम है या ना करने के काम है, ये भी उसूल है। एक इसमें जब्त है, एक इसमें तरतीब है। उस उसूल से, जब्त से, तरतीब से काम होगा तो नतीजा ये होगा कि दीन में हुस्न पैदा होगा, दीन के अंदर हुस्न पैदा होगा। और फिर कोई कहे कि साहब इतना तशद्दुद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत में और तशद्दुद ये तस्वुर भी नहीं है इसका। उसकी मिसाल देखिए, एक आदमी मस्जिद में सफे अव्वल में जमात से नमाज पढ़ने का पाबंद है। अब उसने मोहब्बत से पाबंद किया हुआ है, मामूल है उसका। किसी दिन उसकी आंख देर से खुली, तैयार था आइन टाइम पर, इस्तिंजा के सिग्नल आने लग गए, मिस कॉलें आना शुरू हो गई। आइन टाइम पर, अब अगर कॉल रिसीव नहीं करता, अगर कॉल रिसीव नहीं करता तो मसला। इसलिए जनाब, अब वो जो कॉल रिसीव करने के लिए गए तो पता चला कि कुछ रकातें निकल गई या नमाज निकल गई। अब उसके दिल में एक नदामत पैदा हुई,
हाय आह निकली। तो अल्लाह ताला की रहमत से एक उम्मीद है, वो ये कि इसको सफ़े अव्वल में मस्जिद की तकबीर उला की जो फजाइल और बरकात है वो मिलेंगे। हालांकि इसने इसकी रकातें छूटी या इसकी नमाज फौत हो गई, लेकिन वो जो अश्क नदामत, वो आहुजारी और उसका जो पुराना रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड की वजह से लहुम अजरुन गैरु ममनून। तशद्दुद है। अब आप रोजेदार हैं, बीमार आदमी है, बुढ़ा हो गया, रोजे में खाल फूल कर खा पी रहा है। ये उसूली पॉइंट याद रख लेना, तशद्दुद का नारा लगाते ना, इल्जाम लगाते, उसूली है बात। रोजा है, खा पी रहा है, तो उसूल तो ये है कि जब रोजा नाम ही है ना खाने का, तो तूने खा लिया तो रोजा खत्म। इन शरीयत कहती है नहीं, आपका रोजा है। सुभान अल्लाह, बताइए इतनी सहूलत। मुसाफिर गया सफर में, खबरदार चार रकात जोहर की पड़ी, डंडे पड़ेंगे डंडे, दो रकात पढ़ो तो अंडा मिलेगा। सुभान अल्लाह, इतनी सहूलत, इतनी आसानी। बीमार है, मस्जिद में नमाज पढ़ने को नहीं आ सकता, मस्जिद मत आओ, घर में ही पढ़ो। सुभान अल्लाह, इतनी सहूलत। खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता जी, खड़ा होना पड़ेगा, नहीं बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो। हिलजुल नहीं कर सकते, इशारे करो। इतनी सहूलत, इतनी आसानी, फिर भी इतनी तंग नजरी कि हम इस पर तशद्दुद का इल्जाम लगाए। कितनी राहतें और सहूलतें दी अल्लाह ताला ने, कितनी राहतें हर हर मसले में। अब जकात का मसला है, जकात का मसला है। एक आदमी की मान लो यकुम रबीउल अव्वल है जकात की तारीख, उसके जिम्मे जिब्राए इस्लाम ये डंडा लेकर नहीं खड़े होते कि अगर मान लो 1,00,000 रुपए उसको जकात देना उसके जिम्मे आया, तो जिब्राए इस्लाम डंडा लेकर नहीं खड़े होंगे कि 1,00,000 रुपए अभी अभी अदा करने। नहीं, हिसाब कर लो, थोड़ा 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 देते रहो। यही नहीं बल्कि एडवांस में भी दे सकता है। मुहर्रम में 10 दे दिए, सफर में भी 10 दे दिए, पिछले महीनों में भी दे दिए, सब नोट करता रहा। यकुम रबीउल अव्वल को 1,00,000 हिसाब बना, देखा जनाब 80,000 तो मैं दे चुका हूं, सब 20,000 रह गए, वो भी अदा कर दिए। तशद्दुद है, कितनी सहूलत। फिर हमारे यहाँ ज़कात के मामले में, जैसे मैंने पिछले दिनों भी मैं एक मसला अर्ज किया था, मुझे आज जुम्मे भी ये मसला याद कराना है कि एक है कीमत खरीद, एक है कीमत फरोख्त। अक्सर अशिया पर कीमत फरोख्त पर ज़कात होती है, यानी जो हिसाब किया जाता है तो उसकी जो कीमत फरोख्त है, कीमत खरीद 5 रुपया, कीमत फरोख्त 10 रुपया, परचेजिंग प्राइस, परचेज प्राइस और सेल प्राइस, तो सेल प्राइस पर जकात का हिसाब और किताब किया जाता है। कितने लोगों को नहीं मालूम, ऐसे ऐसे भी लोग, एक साहब ने कहा ऐसे ऐसे भी, अभी अभी कल परसों की बात है, कह रहे वो जिक्र हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा, कहने लगे कि हमारे बड़े भाई का उलमा से बरसों से ताल्लुक, हमें मालूम ही नहीं था। एक दिन बयान में मैंने ऐसे ही शोशा छोड़ दिया था, कहे उलमा से उठ रहा बैठ रहा। मैंने कहा ये उज्र काफी नहीं है। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह जो ये फरमाते थे कि डॉक्टर से दोस्ती काफी नहीं है, जब तक आप उससे दवा नहीं पूछेंगे, आप मरज नहीं बताएंगे। देखा कितनी बड़ी गफलत की बात है, जिंदगी के 30 साल 40 साल 50 साल गुजर गए, आज तक किसी आलिम और मुफ्ती के सामने बैठकर उससे मसला पूछा नहीं। क्या ये मामूली चीज है क्या? इतनी बड़ी गफलत कि हमें सब पता है? इतनी बड़ी गफलत की बात कि मसला पूछा नहीं। लगा उन्होंने बयान में जब शोशा सुना मेरा, मैंने ये बोला तो गए मुफ्ती साहब के पास। मैं कहता हूं भाई, मैं कहता हूं जो बात जाओ मुफ्ती से जाकर पूछो। मुफ्ती के पास गए, फतवा लिख कर दिया, जवाब आया कि जी आपको कीमतें फरोख पर देनी पड़ेगी। जवाब देखिए, मैंने कहा इतनी जिंदगी गुजर गई गफलत का, ये आलम की ये मसला कभी भी नहीं पूछा, इसकी तो आप जिम्मेदार हैं। जबकि पूछना चाहिए, मसाइल है पूछो। और अल्लाह का शुक्र है हम अपने दोस्तों को इस बात की तरकीब देते रहते हैं, कोई बात है पूछते हैं। मैं कहता हूं मालूम नहीं भाई, मुफ्ती से पूछो, बल्कि मुझे भी बता दो। तो ये बात है पूछने की, बहरहाल। लेकिन अब क्या होगा, वो जितने बरस है, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल, तमाम का हिसाब निकालना होगा, जो डिफरेंस आ रहा है। और वो जो डिफरेंस है हिसाब निकाले, शरीयत की आसानी है कि नहीं कोई बात नहीं, एक साथ मत दो, ठीक है, हम नहीं मांग रहे कि पूरा एक साथ दो। कम से कम पहले एतराफ तो करो, हमारे जिम्मे ये है, यहीं से अल्लाह ताला की मदद शुरू हो जाएगी। सुभान अल्लाह, एतराफ क्या, मदद शुरू। अब ये मुजरिमों की फहरिस्त से निकल गया, सुभान अल्लाह, कितना अल्लाह का करम है, एतराफ कसूर करते ही ये मुजरिमों की फहरिस्त से निकल जाता है। वो 100 कत्ल का मुजरिम जिसने अभी सिर्फ उसको तलब थी कि मुझे माफी मांगनी है, इस वजह से इस नियत से चला था, माफी मांगी भी नहीं थी, महरूम नहीं था। ये नफ है, इससे पता ही चलता है कि अल्लाह ताला की रहमत, एक बंदा इस तलब में भी चल पड़े कि मैंने अपने उसूल और इल्म को हासिल करना है, सीखना है, मसला क्या है, उस पर भी अल्लाह ताला की रहमत से, रहमत बहर जखार से बे इंतहा उम्मीद है कि महरूम नहीं फरमाएंगे। कितनी आसानी है बताइएगा। दुनिया का उसूल यह है कि जब तक आप अदा ना करें काम नहीं होता, इतनी शिद्दत है। और शरीयत अल्लाह ताला की रहमत देखिए, आसानी है कि एक बंदा सिर्फ तौबा के लिए चला है, उस पर भी रहमतें हो रही हैं, इतनी आसानी। हाय अफसोस कि इन सहूलतों पर, राहतों पर, रहमतों पर शिद्दत का इल्जाम, कैसी अजीब सी बात। हाँ किसी शख्स का जाति कोई अमल हो सकता है कि वो शरीयत को डंडा लगाकर पेश करे, तो भाई हम उसका हम नहीं कर सकते, शरीयत खुद ऐसी नहीं है। अगर कोई डंडा ही लगाकर पेश करे तो बाद ये उसकी भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर सारे डंडे वाले हो जाएंगे तो फिर नतीजे क्या निकलेगा कि सहूलत और आराम तलबी पैदा हो जाएगी। इसलिए जिहाद का हुक्म भी रखा कि ये भी जरूरी है। अंडे खिलाते खिलाते डंडा भी उठाओ, ईमान लाए, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, सब अंडे ही अंडे हैं। सब आखिर में एक डंडा दिखाए, सब उस जरा से डंडे से पूरा आलम कांप रहा है। सब जरा सा दिखाया। मेरे शेख और मुर्शिद हमारे शाह की मोहम्मद मदर साहब फरमाया, देखो कुरान पाक की आगाज है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीन अनअमत अलैहिम। सब रहमत, अंडे मिरंडे, राहत ही राहत है ना। आखिर में फरमाया गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन। इतना सा डंडा देखा, सब इतना सा, लादा वो भी आखिर में जाके डंडा दिखाया। वो भी ऐसा नहीं कि ये नहीं जाते बस अच्छा जिहाद का नाम है डंडा टुकाई शुरू कर, नहीं 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 ऐसा नहीं, बात करो, बोलो, ترغیب دو, ایمان لے آؤ. نہیں مان لا رہے ٹھیک ہے, کافر رہو دیکھو, لیکن ذرا اپنی حد میں رہو, مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ مت کرو. اتنا تک کتنی راحت, ابھی بھی ڈنڈا نہیں اٹھایا, یہ بھی موقع. سبحان اللہ, اب دیکھیے اب تو اب علاج ہی آپریشن رہ گیا, تو آپریشن کرو گے. یہ اصل میں آپریشن ہے, اصلاح ہے اور کچھ نہیں ہے. وہ بھی آخر میں جا کے, کتنی دیر میں جا کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو تغیر نہیں ہوتا. اس لیے ایک عالم نے بڑی پیاری بات فرمائی, سبحان اللہ, اللہ جزائے خیر دے, میں نے بھی پہلی دفعہ سنی. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں جو تاخیر ہوئی, اس کی ایک وجہ کہ صحابہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئے. اچھا تھا, یقین نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کی محبت ایسی تھی. فرمایا محبت تو اپنی جگہ, محبت تو اپنی جگہ, اصل میں کوئی آثار تغیر آپ کے جسم پر نہیں تھے. سبحان کیسی پیاری بات, واہ, کوئی دنیا سے پردہ فرمانے کے جو آثار ہوتے ہیں اس کا ایک نشان نہیں تھا آپ کے جسم پر. مولانا عبداللہ صاحب دوسری ایک دلیل میں, یعنی اس کی دلیل میں بڑی عجیب بات, سلیمان علیہ السلام جو جنوں سے تعمیر کروا رہے تھے, سہارے سے کھڑے تھے, اسی حالت میں آپ کا, یعنی بڑی پیاری بات فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام کی روح کے قبض کرنے کے لیے اجازت لی جاتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے اتنی بھی تاخیر نہیں فرمائی کہ فرمایا اچھا میں بیٹھ جاؤں یا کچھ کروں, میں بس اسی وقت لبیک, اتنی بھی کہ ذرہ برابر بھی محبوب سے ملاقات میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہ ہو. کیا محبت ہے, لیکن اسی حالت میں اب جن دیکھتے رہے کہ بابا جی کھڑے ہوئے, اب کھڑے کھڑے کھڑے, کیوں ان کو شبہ, جن جیسی قوم کہتے جی سب پتا ہوتا ہے. کیا بولتے ہیں, موکل, ہاں موکل جی, ہمارے موکل نے بتایا, آگ لگائی ہوئی ہے گھروں میں موکل کے بچے. اگر موکل ہی بتاتے وہ جو جن تھے سلیمان علیہ السلام کے, وہ تو ان موکلوں سے زیادہ تگڑے تھے. زمانہ گزر گیا, ان کو پتا نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام پردہ فرما چکے, آپ کا جسم صرف جسم اطہر موجود ہے, وہاں پہ جسد مبارک کھڑا ہے. جنوں کو بھی خبر نہیں, لو جی یہ ہے موکلوں کا حال, سامنے دیکھ رہے ہیں ان کو پتا نہیں کہ, تو دور سے اٹھا کے لائیں گے یہ. اور آپ اگر جن آ بھی جائے, بسم اللہ پڑھ کے تھپڑ لگا دے اس کو, کچھ نہیں کر سکتا وہ آپ کا, یہ تو خود ڈرتے ہیں, آپ کا کچھ نہیں کر سکتا یہ جن ون. اسے گھبرا گنے کی چیز نہیں ہے, یہ کوئی آسمان نہیں ہے جن. ہمارے اردو میں کہتے نا, کوئی آسمان نہیں جہاں تم پہنچ نہ سکو نا, آسمان تک پہنچ نہیں سکتے نا, کہ کوئی آسمان نہیں ہے جن. ارے بھائی جن کیا ہے, وہ بھی مخلوق ہے. اور یہ حالات ہو گئی ان کی غیب کی باتوں کی, اور وہ کہ سب بتاتے ہیں, دھوکے باز صاحب جھوٹے ہیں یہ. اگر کسی کے پاس جن ہے بھی تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے, جنوں کے لیے بھی تھے نبی, یہ بات تو معلوم ہے نا جناب. تو پتہ چلا ان کو بھی اصلاح کی, اخلاق کی, اصلاح اخلاق کی ضرورت تھی, اس پیغام محبت کی ان کو بھی ضرورت تھی. اس لیے بسم اللہ پڑھ کے لگاؤ, کچھ نہیں ہوتا, زیادہ ہو میرے پاس آ جانا, اس کو بھی لے آنا, کوئی مسئلے کی بات, ایسی کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے جن. اور ہمارے اکابرین و بزرگ کا تو ایسے پھرتے رہتے تھے, ایسے پھرتے رہتے تھے جیسے انسان. کبھی کبھی رات آؤٹ ہو جاتا تھا, ایک ایسے ہی جن نے, ایک بزرگ کے یہاں پڑھ رہا تھا تو فرمایا کہ بھائی دیکھو چراغ کی بتی, ذرا لالٹین رکھی تھی اس کو जरा लौ को बुझानी थी या एक चिराग था लालटेन बुझानी थी या बंद तेज करनी थी, फरमाया जाओ। अब वो पढ़ने में मशगूल था, उसने वहीं से बैठे बैठे हाथ बढ़ा दिया, टेंपर खराब हो गए। तुला भागे डर के भागे, कोई क्या हाल हुआ, इतना डांटा, फरमाया नालायक है का, तुझे इस काम के लिए कहा था क्या, ऐसी डांट लगाई कि बस माफी मांगने लगा। ऐसे थे हमारे बुजुर्ग, अब हमने हवा तारी कर लिया तो क्या करें। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम वो तो जब लकड़ी को जिस आशा पर आप तशरीफ फरमाते उसको जब दीमक लगी वो चटकी आप गिरे तब पता चला, तब राज खुला, गोया के आपके जसद मुबारक में जर्रा बराबर तगैयुर नहीं था। सुभान अल्लाह। इससे आप सोचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि कोई आसार नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर में जिस मुबारक में कोई आसार नहीं थे, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने डंडा उठा लिया, तलवार निकाली, कोई कहे गर्दन उड़ा दूंगा। मुनाफिकीन ने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि चहलुम आएगा या 10 मुहर्रम आएगी हम आग लगाएंगे, पूरी प्लानिंग आग लगा देंगे, लेकिन हजरत उमर ने डंडा उठा लिया, सारे दबक गए। फरमाया अगर किसी ने नाम लिया उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। सारे जो है वो पेट्रोल बम लेकर और सब चीज लेकर दबक कर बैठ गए, भाई आज तो ये खान साहब को जोश चढ़ा हुआ है। क्योंकि कहते हैं ना किसी कौम का नाम थोड़ी है, ये तो कैफियत का नाम है जो किसी भी वक्त किसी भी शख्स पे आ सकती है। कैफियत है ना भाई, कैफियत है ये, पठान किसी जात या कौम का नाम नहीं है, कैफियत है, तो किसी पर भी आ सकती है। अब जो वो कैफियत हो अल्लाह आओ सामने तो पता चला ये अल्लाह वाले होते हैं। ये अल्लाह वालों की शान है कि इनकी उल्टी भी सीधी होती है। बुखारी शरीफ में हजरत आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ कि वो जो उठाया क्या रहमत है, इनके डंडे पर भी रहमतें बरस गई। उस सब दबक के बैठ गए, नहीं भाई, इसलिए पता चला डंडा भी मुफीद होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसूल की चीज है क्या, शरीयत रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है। कितनी रहमतों का कहां तक आप जाए बताइए, एक एक मसले में उठाकर राहत रहमत राहत रहमत। सुभान शदीद बारिश है, मस्जिद की जमात की नमाज माफ है, खौफ है, कितने ऐसे हालात है, कितने मसाइल में रात ही रात। आप रुखसत, ये शरीयत का एक मुस्तकिल वो है, बाब है, किताब है, रुखसतों पर अमल। सुभान फिर ऐसी शरीयत पर इल्जाम लगाया जा रहा हो। हर फरमाते दुनिया की बात ये है कि दुनिया की मोहब्बत है तो उसमें कोई रुखसत नहीं, हर काम टाइम पे, क्यों मोहब्बत है। मैं जिस दिन अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाएगी फिर उस वक्त नहीं करेंगे। सारा मसला है कि हमारे दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं है, सारा मसला ये है बस, ईमान प्यारा नहीं है, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत नहीं है। वो मोहब्बत पैदा हो जाए फिर आप देखें, फिर सर्दी क्या, इस जमाने में लोग वीजा लगाने नहीं जाते क्या यूरोप का सुबह सुबह कि जी इतनी सर्दी है, यूरोप वालों को बोलो नहीं भाई हम नहीं आ रहे, कि तुम लोगों ने क्या उसूल बनाया, सुबह 7 बजे टोकन देते हो, और उस 7 बजे का टोकन लेके लेने के लिए वल्ला ये कोट पतलून वाले रात के 2-2 बजे 1-1 बजे खड़े होते हैं वहां पे। आप जरा उनकी हालत देखे वहां जाकर, ये जो फिरौन की तरह जिनका दिमाग है ना, आप जरा वहां जाके देखें, ये मैंने देखा है। समझ में नहीं आता टोकन लेने के लिए इतनी मोटी टाई लगाने की क्या जरूरत है, ये नहीं समझ में आता इतनी टाई, और ऐसा रगड़ता है वो बस। हम गए थे हमारे दोस्त के साथ, संजीदा ऐसे होता है कि जैसे जो है वो मुनकर नकीर आ गए, यकीन जाने ऐसी हालत। आप देखे ऐसे उसके सामने ऐसे जैसे खुदाई फौजदार है उसके सामने ऐसे खड़े होते हैं कि बस हम गए, हमने उससे नॉर्मल आराम से बात की और अल्लाह का शिक्र सुना, उससे तो सवाल पूछे, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। तू मैं आगे था, वो हमारे दोस्त एक है वो भी मौजूद है यहाँ मेरे साथ, वो भी साथ है, ऐसे नॉर्मल आराम से बात की और वो हिलते भी नहीं है वहां, ऐसे साफ सुख के खड़े के बस पता नहीं क्या करेगा, यही से भी जल्द देगा, ऐसा अजीब आलम। भाई क्यों बोले ना उनको समझाओ कि आजकल सर्दी बहुत ज्यादा है, 7 बजे मत भुलवाओ। आम लोग के अंदर जो है वो आप तशद्दुद पसंद तो आप है, मुतशद्दिद आप है, तो मोहब्बत पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, यूरोप की मोहब्बत है हर काम आसान, बीवी से मोहब्बत है, शादी से मोहब्बत है, सारी मुसीबतें बर्दाश्त, कोई ये कहने को तैयार नहीं कि कर्जे लेकर करनी पड़ती है फला, ये क्या मुसीबत है रस में, कोई नहीं, नहीं करो भाई, सब करो भाई। आखिरी बात मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब मोहब्बत है ना, अब मोहब्बत का हक अदा करना है, अब मोहब्बत का हक अदा करने के 2 तरीके। लाइट बंद करते हैं, एक तो तरीका यह है कि मोहब्बत का हक अपनी मर्जी से अदा करें, यानी महबूब को अपनी मर्जी से खुश करें, और एक है महबूब से पूछे आपकी क्या मर्जी है। सुभान अल्लाह, मेरे प्यारे मुर्शिद मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, फरमाते हैं कि सुन्नत पर अमल करना ये महबूब को महबूब की मर्जी से खुश करना है, ये सुन्नत है। महबूब को महबूब की मर्जी से खुश करना ये सुन्नत है, और महबूब को अपनी मर्जी से खुश करना ये बिदात है। क्या आसान मोहब्बत भरी तारीफ, महबूब को महबूब की मर्जी से खुश करना ये सुन्नत है, महबूब को अपनी मर्जी से खुश करना ये बिदात है। अब रबीउल अव्वल का महीना है जी, बहुत दुरूद शरीफ पढ़ो। तो क्यों पढ़ो? हाँ देखा ना, तुम हो ना आशिक रसूल, नहीं हो तुम तो भाई आशिक रसूल है या नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है अगर आशिक रसूल आप हैं तो सीजन में ही दुरूद शरीफ क्यों पढ़े? क्या इसी 12 रबीउल अव्वल के सीजन में ही दुरूद शरीफ पढ़ना है? क्या इश्क जो है वो सीजनल है कि जी जिस तरह किन्नू का सीजन है, जिस तरह से आम का सीजन है, सेब का अनार का सीजन है, चीकू का सीजन है, हर चीज का सीजन है, तो उसी तरह से दुरूद शरीफ का भी सीजन है। ये सीजन नहीं, इसका ताल्लुक सीजन से नहीं मोहब्बत से है, और मोहब्बत मौसम और सीजन की नहीं होती है, बल्कि मोहब्बत तो पूरे साल होती है, उसको मोहब्बत कहते हैं, और जो सीजन हो फिर वो मोहब्बत नहीं है, वो इश्क नहीं, इश्क मजाज है। जैसे महबूब हसीन है, उसका हुस्न है, जमाल है, तो फिदाएं उसका, हुस्न और जमाल रुखसत हो गया, ये भी रुखसत हो गया, तो ये हुआ सीजनल, इसको मोहब्बत नहीं कहेंगे फिर, इसको शहवत और नफ्स बोलेंगे। तो पता चला कि रबीउल अव्वल में तो 12 रबी और वो भी 12 रबीउल अव्वल तक, बस उसके बाद सारा इश्क खत्म, सब सीजन यहां तक, बस 12 रबीउल अव्वल तक, फिर न सुन्नतों पर अमल करें। अच्छा इन दिनों में भी नहीं कि चलो भाई रबीउल अव्वल में ठीक है, हम रबीउल अव्वल मनाते इस तरह कि बहुत गफलतों में दिन गुजर गए, खिलाफ सुन्नत जिंदगी गुजारी, बस इस अब हम अहद करते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में कितनी प्यारी नेमत हमें अता फरमाई, तो आपकी मोहब्बत का हक, चलो अब हम अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक बनाएंगे। बस आगाज शुरू कर दिया, अब पूरा साल नहीं, ता हयात मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक सुन्नतों पर अमल करेंगे, तो फिर अगर ऐसा आजम करता है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसा आजम और ऐसा इरादा और ऐसी मोहब्बत माशाल्लाह, ये तो सलाखों पर है, इस मोहब्बत पर तो रहमत बरसेगी। और बाकी अगर 12 दिन बिरयानी खानी है और इश्क बाजी इश्क है, सुभान अल्लाह, जमात की नमाज नहीं, दूसरे मामला नहीं, और बिजली चुरा के लाइटिंग लगानी है, लाइट यूं घूम रही है, फिर यूं घूम रही है, फिर यूं बड़क रही है, मुख्तलिफ स्टाइल है ना। उसमें दूसरे क्या, हमारे लोग भी ये काम करते हैं कि जी रबी लवल है, चुनाव रबी लवल है, तो मैं तो ज्यादा खुश होता हूँ क्योंकि मैं भी रबी लवल में पैदा हुआ। इसलिए जब कोई पढ़ता है सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, मैं कहता हूँ वालेकुम सलाम। कि अल्लाह की शान है, अल्लाह ने मुझे भी रबी अव्वल में पैदा फरमाया। ये अल्लाह की तरफ से। लेकिन मैं कहता हूँ मेहरबानी करके सिर्फ 12 रबी अव्वल तक नहीं, एक हफ्ता और आगे चल जाओ, 19 मेरी तारीख है, एक हफ्ता और मना लो ताकि मैं भी जरा खुश हो जाऊं। और झूम झूम के पढ़ो, मुझे बिठा लो सामने, झूम झूम के पढ़ो सलात व सलाम अलैके हबीबल्लाह। किसी मुफ्ती को ले आओ, मैं उसको खामोश रहना मेरा काम है। और यह सलात व सलाम का सीगा एक उम्मती के लिए पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल जायज है। देखो ना कि मैं कोई नबूवत के दावा करूं, बिल्कुल भाई। देखो ना, आप किताबों में पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजे पर हाजिर हो, ये पढ़ो सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, और उसके बाद दाएं तरफ हटो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला पर क्या पढ़ो, अस्सलातु वअलैहिस्सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक या खलीफता रसूलिल्लाह। ठीक है ना, तो उम्मती पर जायज है कि नहीं है? तो मुझे बिठा लो, फिर खूब पढ़ो, और आखिर में बिरयानी मिलेगी, हार मिलेंगे, या हार ना दो, नोटों वाला हार देना, वैसे ही नोट दे दो, छल्ला नहीं मना करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबी अव्वल देखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई विलादत ही है ना, 63 बरस आप तशरीफ फरमा रहे हैं, आपने विलादत पर क्या किया? केक काटा, क्या किया, क्या नहीं किया, चराग जलाए, अब क्या जो भी है क्या भाई हमारे पास मौजूद है। फिर सहाबा जिनकी मोहब्बत पर हमें कोई शुबा नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को फरमा रहे हैं, तो जो सहाबा ने क्या वो कर ले, चलो वो छोड़ो, सबसे बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया वो करें ना, आसान बात। अब आपकी मर्जी से खुश करें या अपनी मर्जी से, नहीं जी हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है, चरागा भी करना है, जुलूस भी निकालने हैं, मदनी मुन्नों का भी जुलूस होगा, मदनी बहनों का भी जुलूस होगा, और फला भी होगा। अच्छा भाई, तो फिर मेहरबानी करके इसको इश्क रसूल ना बोला जाए। जी ये कह दो जी हमारी मर्जी है, बस ये कह दो, झगड़ा खुद खलास, खल्ली वल्ली, सही ना जी। अल्लाह ताला समझे ता फरमाए अपनी मोहब्बत अपना कुर्ब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो असलाफ ता फरमाए बड़ी नेमत है, बहुत एहसान है, बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का एहसान और शुक्र है, शुक्र अदा कर चलना चाहिए इस नेमत पर। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।